नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, थिंक लाइक अ फ्रीक, अर्थशास्त्री स्टीवन डी लेविट और लेखक स्टीफन जे डबनर की गैर कथा पुस्तक है। यह उनकी फ्रीकोनॉमिक्स श्रृंखला की तीसरी प्रमुख पुस्तक है और पहली पुस्तकों की तरह केवल छिपे हुए प्रोत्साहनों के रोचक उदाहरण नहीं देती। इसका मुख्य उद्देश्य पाठक को कठिन समस्याओं के बारे में अधिक उत्पादक, रचनात्मक और तर्कसंगत ढंग से सोचना सिखाना है। लेखक कहते हैं कि अच्छी समस्या समाधान क्षमता असाधारण बुद्धि से कम और सही प्रश्न पूछने की आदत से अधिक बनती है। पुस्तक सामान्य समझ, नैतिक निश्चितता, प्रतिष्ठा की चिंता और समूह के दबाव को ऐसे अवरोधों के रूप में देखती है जो तथ्य सामने होने पर भी निर्णय बिगाड़ सकते हैं। खेल, व्यापार, परोपकार, राजनीति और रोजमर्रा के व्यवहार से लिए गए प्रसंगों के जरिए यह परिकल्पना बनाने, प्रमाण खोजने, असफल विचारों को जल्दी छोड़ने और लोगों को समझाने की विधियां बताती है। इसका स्वर हल्का और कथात्मक है, लेकिन केंद्रीय आग्रह गंभीर है। पहले अपनी अज्ञानता स्वीकार कीजिए, फिर समस्या को नए ढंग से परिभाषित कर जांचिए। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, प्रतिष्ठा के भय से अलग होकर वास्तविक लक्ष्य पर ध्यान देना। पुस्तक का आरंभिक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि लोग अक्सर परिणाम के बजाय इस बात से संचालित होते हैं कि असफल दिखने पर दूसरे क्या सोचेंगे। विश्व कप पेनल्टी किक के उदाहरण में आंकड़ों के अनुसार गेंद को बीच में मारना उपयोगी हो सकता है, फिर भी खिलाड़ी प्रायः किनारों को चुनते हैं। कारण केवल गोलकीपर की रणनीति नहीं, बल्कि बीच में किक चूक जाने पर मूर्ख दिखने का अधिक डर भी है। लेखक इस व्यवहार को व्यापक निर्णयों से जोड़ते हैं। कार्यस्थल में प्रबंधक प्रचलित योजना चुन सकता है, निवेशक भीड़ का अनुसरण कर सकता है और नीति निर्माता परिचित उपाय को अपनाता रह सकता है, क्योंकि अलग निर्णय का बचाव कठिन होता है। फ्रीक जैसा सोचना पहले लक्ष्य को साफ करने की मांग करता है। यदि लक्ष्य बेहतर परिणाम है तो सामाजिक रूप से सुरक्षित दिखने वाला विकल्प और सांख्यिकीय रूप से उपयोगी विकल्प अलग हो सकते हैं। इसका अर्थ हर बार जानबूझकर विरोधी राय अपनाना नहीं है। अर्थ यह है कि किसी विकल्प को उसकी प्रतिष्ठा, परंपरा या लोकप्रियता से नहीं, उपलब्ध प्रमाण और अपेक्षित परिणाम से परखना चाहिए। इस दृष्टि की व्यावहारिक कठिनाई भी पुस्तक स्वीकारती है। अलग सोचना कभी कभी असुविधाजनक और अलोकप्रिय हो सकता है, फिर भी लेखक के लिए बौद्धिक स्वतंत्रता का मूल्य इसी में है कि व्यक्ति दिखावे की लागत और वास्तविक लक्ष्य की लागत को अलग अलग देख सके। दूसरा, मैं नहीं जानता कहना पूर्व धारणाओं को जांचने की शुरुआत है। लेविट और डबनर के अनुसार समस्या पर काम करने का सबसे उपयोगी आरंभ उत्तर का दावा करना नहीं, बल्कि ज्ञान की सीमा स्वीकार करना है। मैं नहीं जानता कहना निष्क्रियता नहीं है, यह उस खाली स्थान को पहचानना है जहां जांच, आंकड़े और बेहतर प्रश्नों की जरूरत है। इसके विपरीत सामान्य समझ या नैतिक विश्वास अक्सर निष्कर्ष पहले तय कर देते हैं और प्रमाण बाद में खोजे जाते हैं। पुस्तक पाठक को अपनी नैतिक दिशा पूरी तरह त्यागने के लिए नहीं कहती, बल्कि चेतावनी देती है कि नैतिक आक्रोश विश्लेषण का स्थान न ले ले। जब किसी विषय पर पहले से तय हो कि कौन सही है और कौन गलत, तब समस्या की वास्तविक संरचना, प्रोत्साहन और अनपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं देते। यह आग्रह विशेष रूप से सार्वजनिक बहसों में प्रासंगिक है, जहां पहचान और विचारधारा तथ्य स्वीकारने को कठिन बना सकती है। लेखक की पद्धति वैज्ञानिक रूप के निकट है। एक संभावित व्याख्या बनाई जाए, उसके पक्ष और विपक्ष के प्रमाण खोजे जाए और निष्कर्ष को अस्थायी रखा जाए। यह तरीका निश्चित उत्तर देने की गति को कम कर सकता है, लेकिन गलत प्रश्न पर तेज गति से काम करने की भूल से बचाता है। पुस्तक यह भी दिखाती है कि विशेषज्ञ होना पूर्वाग्रह से सुरक्षा नहीं देता, इसलिए जिज्ञासा, विनम्रता और प्रमाण बदलने पर राय बदलने की क्षमता किसी भी क्षेत्र में बेहतर निर्णय के मूल उपकरण है। तीसरा, समस्या को नए ढंग से परिभाषित करने से समाधान का दायरा बदलता है। पुस्तक का एक केंद्रीय व्यावहारिक पाठ है कि कई कठिन समस्याएं इसलिए अटकी रहती हैं क्योंकि उनका प्रारंभिक वर्णन बहुत संकीर्ण होता है। लोग प्रायः पूछते हैं कि मौजूदा उपाय को कैसे बेहतर बनाया जाए, जबकि अधिक उपयोगी प्रश्न यह हो सकता है कि वास्तविक बाधा क्या है या वांछित परिणाम पाने का कोई दूसरा रास्ता है क्या। इस पुनर्परिभाषा से समाधान की सूची बदल जाती है। लेखक छोटे और स्पष्ट प्रश्नों को महत्व देते हैं, क्योंकि बहुत बड़े प्रश्न अक्सर इतनी अस्पष्टता पैदा करते हैं कि प्रगति मापना असंभव हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी संगठन का लक्ष्य केवल किसी विचार को बचाना नहीं, बल्कि यह समझना होना चाहिए कि वह किस जरूरत को पूरा कर रहा था और क्या वह जरूरत किसी सरल या सस्ते तरीके से पूरी हो सकती है। यह सोच छोड़ने की क्षमता से जुड़ी है। किसी परियोजना, नीति या व्यक्तिगत प्रयास को जारी रखना केवल इसलिए उचित नहीं कि उसमें पहले बहुत समय या धन लग चुका है। यदि नई जानकारी बताती है कि रास्ता काम नहीं कर रहा तो उसे छोड़ना संसाधनों की बर्बादी रोक सकता है। कोले कैसिडिर ओयर मार्जगरी दत्कार का तरह हजुआ हो डोडेसा करपोंड का जिला इडा हुतो हाजर चोब हार का। लेखक असफलता को पहचान की हार नहीं सूचना का स्रोत मानते हैं, इसलिए वे जल्दी और कम लागत पर परीक्षण करने की प्रवृत्ति को उपयोगी बताते हैं। यह दृष्टिकोण चमत्कारी समाधान का वादा नहीं करता। इसका लाभ इतना है कि व्यक्ति गलत समस्या पर कुशलता से काम करने के बजाय सही समस्या खोजने में पहले निवेश करता है। चौथा, लोगों की घोषणाओं के बजाय उनके व्यवहार और प्रोत्साहनों का अध्ययन फ्रीकोनॉमिक्स परंपरा के अनुरूप। यह पुस्तक कहती है कि लोग जो कहते हैं और जो वास्तव में करते हैं उनके बीच अक्सर अंतर होता है, इसलिए किसी समस्या को समझते समय केवल सर्वेक्षण, सार्वजनिक बयान या घोषित इरादे पर्याप्त नहीं है। यह देखना जरूरी है कि व्यवहार से व्यक्ति को कौन सा लाभ, सुविधा, सुरक्षा या सामाजिक पहचान मिल रही है। प्रोत्साहन हमेशा धन तक सीमित नहीं होते। प्रतिष्ठा, समय की बचत, समूह में स्वीकार्यता, जोखिम से बचाव और मनोरंजन भी व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। इस विश्लेषण का उद्देश्य लोगों को स्वार्थी घोषित करना नहीं है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि इच्छित परिणाम के विरुद्ध कौन सी व्यवस्था काम कर रही है। यदि नीति, उत्पाद या अभियान केवल आदर्श व्यवहार मानकर बनाया जाए तो वह वास्तविक परिस्थितियों में विफल हो सकता है। पुस्तक के उदाहरण यह संकेत देते हैं कि असामान्य दिखने वाला व्यवहार भी कभी कभी तार्किक होता है, जब उसे व्यक्ति के उपलब्ध विकल्पों और प्रोत्साहनों के संदर्भ में देखा जाए। इसी कारण लेखक आंकड़ों और वास्तविक परीक्षणों को महत्व देते हैं। वे अनुमान की जगह यह पूछने को कहते हैं कि क्या सच में व्यवहार बदला, किसके लिए बदला और किस कीमत पर बदला। यह पद्धति विशेषकर व्यापार, सार्वजनिक नीति और परोपकार में उपयोगी है, जहां अच्छे इरादों को सफलता का प्रमाण मान लेने का खतरा रहता है। बेहतर विश्लेषण घोषित उद्देश्य, वास्तविक व्यवहार और व्यवस्था के प्रोत्साहनों के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। अंत में कहानी, सहानुभूति और प्रीमॉर्टम से बेहतर मनाना और तैयारी करना। पुस्तक समस्या समाधान को केवल सही उत्तर खोजने का काम नहीं मानती। कोई उपयोगी विचार तब भी निष्प्रभावी रह सकता है जब उसे अपनाने वाले लोगों की चिंताएं, भाषा और प्रेरणाएं समझी न जाएं। लेखक विशेष रूप से समझाने की कला पर ध्यान देते हैं। उनका तर्क है कि अपमान, नामकरण या नैतिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन विरोधी को मनाने के बजाय उसे रक्षात्मक बनाता है। प्रभावी संवाद के लिए यह जानना आवश्यक है कि सामने वाले व्यक्ति को किस बात की परवाह है और प्रस्ताव को उसी संदर्भ में कैसे समझाया जा सकता है। कहानी इस प्रक्रिया में शक्तिशाली माध्यम बनती है क्योंकि वह अमूर्त आंकड़े को मानवीय और यादगार रूप दे सकती है। हालांकि कहानी प्रमाण का विकल्प नहीं है, वह प्रमाण पर ध्यान खींचने और जटिल विचार को समझाने में सहायक है। पुस्तक प्रीमॉर्टम जैसी योजना विधि भी सुझाती है। इसमें परियोजना शुरू होने से पहले कल्पना की जाती है कि वह असफल हो चुकी है, फिर संभावित कारणों की सूची बनाई जाती है। यह साधारण जोखिम सूची से अलग है क्योंकि यह समूह को सफलता के उत्साह से बाहर निकालकर छिपी कमजोरियों पर बात करने देता है। संवाद और प्रीमॉर्टम दोनों का साझा सिद्धांत है कि विरोध, असहमति और संभावित विफलता को दबाने के बजाय पहले से उपयोगी सूचना में बदला जाए। इस तरह बेहतर विचार के साथ उसे लागू करने की वास्तविक क्षमता भी बढ़ती है। निष्कर्ष में थिंक लाइक अ फ्रीक उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो निर्णय लेने, समस्या समाधान, नीति, व्यापार, परोपकार या संवाद में अधिक जांचपरक दृष्टि विकसित करना चाहते हैं। यह खास तौर पर उन लोगों को आकर्षित करेगी जिन्हें फ्रीकोनॉमिक्स की शैली पसंद है, लेकिन जो केवल रोचक सामाजिक पहेलियों के बजाय उस शैली के पीछे की सोच को समझना चाहते हैं। पुस्तक से मिलने वाला व्यावहारिक लाभ किसी तैयार सूत्र की सूची नहीं बल्कि प्रश्नों का बेहतर क्रम है। पहले लक्ष्य स्पष्ट करना, फिर अपनी अज्ञानता मानना, समस्या को फिर से परिभाषित करना, व्यवहार के पीछे प्रोत्साहन देखना, छोटे परीक्षण करना और असफलता की संभावना पर पहले विचार करना। ये आदतें निजी फैसलों से लेकर टीम परियोजनाओं तक लागू हो सकती हैं। बौद्धिक लाभ यह है कि पुस्तक सामान्य समझ और नैतिक निश्चितता को अंतिम प्रमाण मानने की प्रवृत्ति पर संदेह करना सिखाती है। फिर भी इसे कठोर अकादमिक अर्थशास्त्र की पुस्तक समझ कर नहीं पढ़ना चाहिए। इसकी शक्ति विस्तृत सिद्धांत निर्माण में नहीं बल्कि छोटे प्रसंगों के जरिए सोच की बाधाओं को स्पष्ट करने में है। इसी वजह से कुछ पाठकों को इसकी सलाह परिचित भी लग सकती है। समान श्रेणी की अनेक स्व सहायता पुस्तकों से इसका अंतर इसकी फ्रीकोनॉमिक्स शैली है, जिसमें प्रोत्साहन, व्यवहार, आंकड़े और उल्टे प्रतीत होने वाले प्रश्न एक साथ आते हैं। यह पुस्तक निश्चितता देने के बजाय बेहतर जांच की आदत विकसित करने पर जोर देती है और यही इसे उपयोगी बनाता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं स्टीवन डी लेविट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।